यीशु मसीह के साथ दावे जो हमने शुरू करा था, और हमने देखा था किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कालीन में इन दावों कहा, और ये दावे बहुत महत्वपूर्ण हैं। न केवल ये दावे पुनरुत्थान का कारण है, चुनौती का कारण है और सच है। जितना अधिक हम इस पर विचार करें तो पहला दावा था प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो यूहन्ना उसके 6:35 में था। दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो 8 अध्याय उसके 12 पद में था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का द्वार मैं, जो 10 अध्याय उसके 7 और 9 पद में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूँ, 10 अध्याय 11 और 14 पद में था। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, 11 अध्याय 25 पद। और पिछला हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, 14 अध्याय 6 पद। और आज हम आखिरी स्तर पहुँचेंगे, जो 7वां दावा है, 7वां यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 1 पद में हम और 5वें पद में पाते हैं। लेकिन पहले पद से लेकर 17 पद तक आज हम कुछ बातों पर विचार करना चाहेंगे। 11 अध्याय में लाजर को जलाया है, 12 अध्याय में लाजर की स्थिति को देखा, परिवर्तित स्थिति है उसका, परिवर्तित जीवन है, परिवर्तित स्थान है, और हमने इन सारी सब परिवर्तित संगति है जो पिछली बार हमने विचार किया। लेकिन जब 14 अध्याय में आते हैं तो 14 अध्याय में वो उनके साथ बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए उनको एक निश्चयता दिलाते हैं कि जिस पर विचार करा था पिछले बार हमने, कि मैं जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूँ। लेकिन जैसे ही 14 अध्याय के अंत में हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस उपरोटी कोठरी से बाहर निकलते हैं। अगर 14 अध्याय के आखिरी पद को आप पढ़ेंगे, 14 अध्याय के आखिरी पद को, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो यहां से चलें। अभी वो बैठे हुए हैं शिष्य के साथ, बैठकर बातचीत कर रहे हैं। 13 अध्याय में पांव धोने से शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह पांव धोते हैं, अंतिम फसह में भाग लेते हैं, ये सब कुछ बात करते हैं, उनको कुछ आगे बारे में बताते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, पवित्र आत्मा क्या करेगा ये सारी चीज बताते हैं। लेकिन जैसे 14 अध्याय के अंत में आते हैं, और तब वो कहते हैं, उठो यहां से चलें, और तब वो आगे निकल करके इस बात को बोलते हैं कि सच्ची साक्षरता मैं हूं, यहां बोलते हैं। अभी याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले यशाया उसके 5 अध्याय को पढ़ा, केवल हमने एक स्थल को पढ़ा। पुराने नियम में हम जब बार बार पढ़ते हैं, अगर आप वजन संहिता 80 अध्याय को पढ़ेंगे, सामेति को पढ़ेंगे, यदि आप यज्केल उसके 15 अध्याय को पढ़ेंगे, यदि आप होशे उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे, तो ये सारे अध्याय वजन संहिता 80 है, और यज्केल 15 है, होशे 10 है, यशाया 5 है। बार 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 प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, और बात क्या कही है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इसराइलियों से बात कर रहे हैं, और इसराइलियों से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो तुमको मिस्र में से निकाला था, और मिस्र में से निकाल करके तुमको एक ऐसी दाखलता के रूप में रोपना चाहता, लगाना चाहता, जिसमें फल उत्पन्न हो सके, लेकिन ऐसे उत्पन्न नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। और जितने ये लोग थे, जो यहूदी लोग थे या शास्त्री लोग थे या फरीसी लोग थे, ये हमेशा इस बात पर गर्व करते थे कि हम तो परमेश्वर की चुनी हुई दाखलता है। इसराइल को देखते हैं, ये इस बात पर हमेशा गर्व करते थे कि हम तो परमेश्वर के द्वारा इसराइल के कौम के अंग हैं, व्यवस्था हमारी है, नबी हमारे हैं, और वो सारी चीज हमारी है, हम तो चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए के नाते हम एक उस दाखलता के समान हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि परमेश्वर अगर दाखलता की बात कर रहा है तो परमेश्वर चाहता क्या है। प्रभु यीशु मसीह को संसार से चले जाना है। यूहन्ना 15 अध्याय और 16 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक फेयरवेल मैसेज है, विदाई का संदेश है। आप देखते हैं अक्सर जब किसी की विदाई होती है तो किस प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं। 17 अध्याय में प्रभु यीशु प्रार्थना करेंगे। 15 और 16 अध्याय एक ऐसे अध्याय हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए विदाई संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहा जाए कोई व्यक्ति है जो संसार से विदा हो रहा है, और वो अपने प्रियों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है, तब बातचीत करते हुए अपने लोगों को बुलाता है, और बुला करके जो कुछ उसके मन में गुप्त बातें हैं, छिपी बातें हैं, ये या रहस्य बताते हैं या कीमती बातें हैं वो उनसे उनको कहना चाहता है। और ठीक इसी तरह का ये चित्रण हम इस 15 अध्याय में और 16 अध्याय में देखते हैं। समय नहीं है कि हम एक घंटे में सारी चीजों का वर्णन करें, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसको तस्वीर के रूप में डालना चाह रहा हूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए विदाई संदेश। अब दो बातें सामने हो रही हैं, एक ओर प्रभु यीशु मसीह विदाई संदेश दे रहे हैं, दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह ये देख रहे हैं कि इन लोगों को ऐसे लोगों के बीच में सेवा करनी होगी, स्वयं को एक दाखलता के रूप में समझ रहे हैं और इनका यह भ्रम है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस क्लेम को करते हुए, इस दावे को करते हुए कुछ बातों को समझाना चाहते हैं। अब एक दो पद को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला से 4 पद तक। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर अब इन शिष्यों से बात कर रहे हैं। एक और बात है, प्रभु यीशु मसीह ने जब भी बातें की हैं, दृष्टांत दिए हैं, तो उसी की वहीं की परसभूमि के अनुसार और वहीं की दैनिक जीविका के अनुसार जो चीजें वो लोग उपयोग करते थे उन्हीं को लेकर प्रभु ने सिखाने का प्रयास किया है, जिनको वो आसानी से समझ सकते थे। और उस स्थान में, उन नगरों में, पलस्तीन देश में ये दाग की बारी का कार्य बहुत अधिक प्रसिद्ध था। एक मुख्य, दो फल मुख्य थे, एक अंजीर का और एक ये दाग की बारी का, ये दो बहुत। और इसीलिए पूरे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इन दो चीजों को बहुत इस्तेमाल किया है अपने वचन, अपनी शिक्षाओं को देने के लिए, अंजीर और दाग। तो इस चीज को देखते, और ये लोग अच्छी तरह से समझ सकते थे क्योंकि जब जलते थे। कई बार आपने शायद कई चर्चेज में आप गए होंगे, और चर्चेज में आप जाते हुए आपने देखा चर्चेज में, बहुत बड़े बड़े चर्चेज बनते हैं तो उसमें कांच के शीशे से कुछ डिजाइन बने रहते, कुछ लोगों की तस्वीर रहती है, लेकिन अधिकतर चर्चों में दाग की बारी बनी रहती है, दाग लटका हुआ दिखाई देता है बड़े बड़े शीशों में, आपने देखा। तो ये दाग उसी चीज का प्रतीक है, अंगूरों की बारी दिखाई देती है, ये उसी चीज का प्रतीक है जो पुराने नियम से चला आ रहा है, और आज भी लोग उसको एक डिजाइन के रूप में या उसमें लेते हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में वो चीज बसा। शायद बहुत लोग उसके अर्थ को नहीं जानते, लेकिन चूंकि चला आ रहा है इसलिए उस डिजाइन को बना के रखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। झूठी दाखलता क्या है? झूठी दाखलता जो हमने देख चुके हैं, चाहे व्यवस्था को समझ लीजिए जिस पर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे, चाहे आडंबर जिसको पालन कर रहे थे, चाहे उनके रीति विधि थे जिसको मान रहे थे, जो कुछ थे, लेकिन जो परमेश्वर चाह रहा था वो नहीं था। क्या चाह रहा था? परमेश्वर उनके जीवन से फल चाह रहा था, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं थे। और तब प्रभु यहां पर कहते हैं तीन बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, पिता किसान है, एक विश्वासी जन डाली है। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, बेल जिसको कह सकते हैं, जो जमीन में लगती है और फिर फैलती है। पिता किसान है जो भूमि को तैयार करता है और भूमि को तैयार करके उस दाखलता को लगाता है और वो उगती है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस संसार में बोया है। परमेश्वर पिता था जिसने पुत्र को संसार में इस तरह से दे दिया ताकि उसके द्वारा जो उस डाली जुड़ जाए वो उसमें फलवंत हो सके। डाली प्रत्येक विश्वासी है। अब यहां इसको समझना है, डाली तने से निकलती है, दाखलता से निकलती है। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्म प्राप्त करता है, बिना नए जन्म प्राप्त करे, बिना प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करे, बिना पापों की क्षमा को प्राप्त करे, हमारा संबंध यीशु मसीह से, उस लता से नहीं हो सकता। तो यदि मैं और आप डाली हैं, तो पहला प्रश्न यह है, कब मैं और आप उससे उत्पन्न हुए हैं? कौन सा समय था
जब मैंने और आपने उसके द्वारा नया जन्म को पाया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर है वो शरीर से जन्म लेता है, यूहन्ना उसके पहला अध्याय उसके 12 पद में, लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर के संतान है। कब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, ये नहीं कि आप मसीह परिवार में कब पैदा हुए, ये नहीं कि आप मसीह रीति विधियों को आप कब मान रहे हैं, ये नहीं कि मसीह चर्च में आप कब जा रहे हैं, ये नहीं। प्रश्न ये है कब आप उस मसीह से उत्पन्न हुए। जैसे एक डाली दाखलता से निकलती है, उत्पन्न होती है, इसको समझ। और परमेश्वर का वचन बार 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 इस बात को सिखाता है, कहता है कि वो पिता जो किसान है जिसने उस दाखलता को लगाया, अर्थात यीशु मसीह को लगाया है, उस पिता के द्वारा पुत्र इस संसार में बोया गया है और उस पुत्र के द्वारा मैं और आप पिता के संतान बनते हैं। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है उन्होंने परमेश्वर पिता को ग्रहण किया, जो यीशु से जन्मा है वो परमेश्वर पिता से जन्मा है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या मेरा और आपका संबंध उस लता के समान से जो यीशु मसीह है उस डाली के समान है या नहीं। पहला, अगर वो नहीं है तो आगे कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह दो प्रकार की डाली दिखाई दे रही है। अब आगे चल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो क्या कहता है। पहली बात, प्रश्न यह है, प्रभु का धन्यवाद हो यदि आपने उसको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। यदि आप जानते हैं कि आपका नया जन्म हो गया, यदि आप जानते हैं कि आप प्रभु से जन्मे हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, बाइबल ये नहीं सिखा रही है कि आप मसीह परिवार में कब पैदा हुए, वो ही नहीं सिखा रही। बाइबल ये नहीं सिखा रही है कि आपने चर्च में जाना कब शुरू हुआ, ये नहीं सिखा रही। बाइबल ये नहीं सिखा रही है कि आपका बपतिस्मा कब हुआ, ये नहीं सिखा रही। परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि आपने परमेश्वर में प्रभु में जन्म कब लिया, कब आपने पापों से पश्चाताप करके उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मारा जाएगा। चर्च जाने से हम बचेंगे नहीं, बपतिस्मा लेने से हम बचेंगे नहीं, दुआ प्रार्थना करने से बचेंगे नहीं, लेकिन पापों की क्षमा को प्राप्त करने से हम बचेंगे। शुरुआत वो है और हमें बार बार इस बात को समझना है, क्या वो मेरे जीवन में शुरुआत हुई है या नहीं है। तब आगे चल के वो कहता है दूसरे पद में, प्रत्येक डाली जो मुझ में है, किस में है। अब दो प्रकार की डाली है, डाली जुड़ी हुई है, कह रहा है जो डाली है लेकिन नहीं फलती, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, उसे वो काट डालता है और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे छांटता है। दो काम कर रहा है यहां पर, दो प्रकार की डालियां हैं, दो प्रकार के कार्य हैं, दो प्रकार के फल हैं। पहली डाली कौन सी है, एक डाली जो लगी तो है फल ला रही है और दूसरी डाली जो फल नहीं ला रही है। दूसरी बात, दो प्रकार के कार्य हैं, एक कार्य है कि एक काटने का कार्य है और एक छांटने का कार्य, वो पिता करता है, काटता भी है छांटता है। दो प्रकार के फल हैं, एक फल सच्चे फल हैं जो परमेश्वर की महिमा का कारण भी आगे देखेंगे, एक फल है जो निकम्मे फल है। इसराइल क्या था, इसराइली वो डाली थी जिसको परमेश्वर ने लगाया था, लेकिन उसमें कैसे फल लग रहे थे, निकम्मे फल लग रहे थे। मैं बार बार उन पदों को बोल रहा हूं, घर में जाके समय निकलेगा मिलेगा जरूर पढ़िए, यशायाह 5:1-7 तक, या यज़कएल 15:1-10 तक, या होशे 10 और उसका 1-10 पद तक, और उसका भजन संहिता 80:14 पद से आगे तक। बार 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 परमेश्वर का वचन दोहराता है इन बातों को। दो प्रकार की डालियां, एक डाली जिसमें फल लग रहे हैं। अब ये मैंने और आपने प्रभु को पा लिया, लेकिन उस जुड़ने के बाद प्रश्न ये दूसरा है, क्या मेरा और आपका जीवन फलवंत है या नहीं है। दूसरा, जुड़ गए, हमने उद्धार पा लिया, हमने प्रभु ग्रहण कर लिया, हमें पापों की क्षमा मिल गई, हमने 10 पहले, 15 पहले, 20 पहले यीशु को ग्रहण किया था, वो हमारा उद्धार करता है, हम मर जाएंगे तो हमें एक आशा है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या मेरे और आपके जीवन में फल दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे और शिष्य को उनको भूख लगी, दूर से उन्होंने किसको देखा? एक अंजीर के पेड़ को देखा, और अंजीर के पेड़ में हरे पत्तों की कमी नहीं थी, हरे पत्तों की कमी नहीं थी। लेकिन जब ये लोग नजदीक गए इस बात की आशा रखते हुए कि इसमें फल मिलेंगे, लेकिन क्या वो वहां फल नहीं थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? तू आज से इसमें फल ना लगे। और जब कुछ समय बाद वापस आए, चेलों ने उस पेड़ को क्या देखा? सूखा हुआ पाया। हरे पत्ते तो थे लेकिन फल नहीं थे। परमेश्वर हरे पत्ते नहीं चाहता। हमने यीशु मसीह को तो पा लिया, अभी हम आगे चल के देखेंगे थोड़े बातों को, विश्वासी बन गए, सब कुछ अच्छा है, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, हो सकता है हमारे जीवन बहुत हरियाली दिखाई दे रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत कुछ है, लेकिन फल कहाँ है? और अगर फल नहीं है तो परमेश्वर को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, और यह गंभीर बात है, इसको मुझे और आपको समझना है। तो आज का संदेश मेरे और आपके लिए एक चुनौती का संदेश है, मुझे और आपको जांचने का संदेश है, मुझे और आपको अपने आप अपने जीवन का अवलोकन करने का संदेश है, कि मैं और आप अपने जीवन को जांचें, मैं और आप अपने जीवन का अवलोकन करें। अब सोचिए प्रभु यीशु मसीह जो सातवां दावा कर रहे हैं किस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं, कहां से उन्होंने शुरू करा है, जीवन की रोटी मैं हूं, और करते 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 अंत में आ रहे, सब कुछ मैं हूं, तुम्हारे लिए द्वार में हूं, तुम्हारे चरवाह में हूं, तुम्हारे जीवन देने वाला मैं हूं, तुम्हें सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये चुनौती है, और मुझे और आपको इस चुनौती को समझना है, गंभीरता से लेना है मेरे भाई बहन, गंभीरता से लेना। और तब आगे चल के वो कहता है जो का वो जो नहीं फलती उसे काट डालता, हम फिर से वापिस आएंगे, काट डालता है, क्या से क्या करता है वो, ना केवल काट डालता लेकिन कुछ और भी काम करता है। वो कह रहा उसे काट डालता है, एक और काम करता, आप देखिए छठे पद में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। जब यूहन्ना 13 अध्याय को आप आरंभ करते हैं, यूहन्ना 13 अध्याय को आप आरंभ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ और उन शिष्यों के समूह में, शिष्य ध्यान दीजिएगा 12 शिष्य हैं, और उन 12 शिष्यों में एक ऐसी डाली भी थी जो उसके साथ रह रही थी। आश्चर्यकम देखा, शिक्षा पाई, भरपूरी के साथ सब कुछ, क्या यहां तक की जिम्मेदारी संभाल रही, सब कुछ था उसके साथ, लेकिन वो डाली कैसी थी? वो बाद में काट डाली गई और बाद में जला दी गई, यहूदा स्मृति। वहां पर भी हम चित्रण को देखते हैं, आरंभ से 13 अध्याय के आरंभ से हम देखते हैं 12 शिष्य थे, लेकिन उन 11 शिष्यों में कुछ भटके भी, लेकिन बाद में वापस आए, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा। लेकिन एक ऐसी डाली थी जो हमेशा हमेशा के लिए काट डाली गई, सूख गई। किसके साथ था वो? यीशु के साथ था, यीशु के साथ चल रहा था, आश्चर्य कर्मों को देख रहा था, शिक्षा को पा रहा था, संगति को पा रहा था, तृप्त हो रहा था, भीड़ खिलाई जा रही थी तो उसने भी खाया, तृप्त होकर कहा, तूफान आया, सब कुछ का आनंद उठाया, लेकिन अंत क्या था उसका? मेरे प्रियो ये गंभीर बात है, चुनौती है मेरे बात। ऐसा तो नहीं, हमने शुरुआत तो की यीशु के साथ, यीशु के साथ रह तो रहे हैं, कहते तो हम यीशु के साथ रहने, लेकिन अंदर हमारे जीवन में उस यहूदा स्मृति के साथ शायद वो चीज नहीं है जो यीशु के साथ जुड़ा होना चाहिए। हमारा स्वार्थ हो सकता है, हमारा लालच हो सकता है, हमारी बुरी अभिलाषाएं होती हैं, हमारी संसारिक इच्छाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, ओ ठीक है, संगति में जाएंगे, संगति में जाएंगे, आनंद मिलेगा, अच्छे लोग हैं, अच्छा है, सब कुछ सज के आते हैं, अच्छी बैठते हैं, बातचीत बहुत अच्छी रहती है, ये होता है वो होता है, अरे बीमारी में प्रार्थना कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, सहायता कर देंगे, ऐसे सब कुछ हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन क्या वो डाली मैं और आप अंत क्या होने कहां पर जा रहा है, इसको देखना गंभीरता है। ये मेरे और आपके लिए व्यक्तिगत सोचने की बात है, चुनौती बात है। वो क्या करा जाता है? कह रहा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, दिख तो रहा है, और हम बहुत बार देखते हैं, एक बार यहां पर एक घटना घट गई, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे भाई को मुनीम को प्रभु ने बचा लिया। आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे शरीर कांप जाता है। मुनीम भाई, यहाँ सामने आप एक पेड़ देखते हैं, पेड़ पे कुछ काम कर रहे थे और अक्सर डालियों को ठीक ठाक करते हैं, वो कर रहे थे, और यही वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, ये थी एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई थी, और भाई अमित से गलती हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ठीक उसी समय भाई मुनीम हटे थे वहां से, और वो गाड़ी शायद गियर में थी, उन्होंने चाबी लगाई, क्या लगी गाड़ी एकदम से भाग, और एकदम से भाग करके वो दीवार थी, पेड़ से टकराई, दीवार से टकराई, गाड़ी रुक गई खैर, लेकिन पेड़ टूट गया। और पेड़ टूट गया, हम लोग सब दुखी हुए, हर्षित भैया थे, सब लोगों ने मेहनत करी, लेकिन मुनीम भाई ने ना केवल अपने जीवन को बचा लिया, उनका जीवन प्रभु ने बचा लिया, बच गए वो, लेकिन उस पेड़ को संभाल संभाल के आज उसमें वही हरियाली ला दी जो आज आप देख सकते हैं। किसी को नहीं लगेगा कि वो पेड़ टूट गया था, बिल्कुल चारों तरफ से बांधा, पता नहीं क्या क्या लगाया, लकड़ी पट्टी जैसे कपच्ची लगाते हैं, सब कुछ करके पूरे आज भी मैं सोचता हूं, मैं उस चित्रण को याद करता हूं जब उसके कारण वो सूख गया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस माली ने, मुनीम भाई का नाम लेके कह रहा हूं, उस माली ने परिश्रम करके उसमें हरियाली को और पुनः ला दिया, उस पेड़ पुनः सुंदर बन गया। खैर वो फल देने वाला नहीं है, लेकिन वो सुंदर देखने वाला है। लेकिन हमारा माली तो उससे बढ़कर है, प्रभु यीशु मसीह है। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा अपने जीवन पर अवलोकन करिए थोड़ा। आज वो ये कहता है, सब आगे चल के कह रहा है, लेकिन एक डाली ऐसी भी, दूसरी डाली, एक डाली तो फल ले रही, काट दिया, लेकिन दूसरी डाली है वो क्या होता है, वो कह रहा छांटता है, फल आ रही है फिर भी छांटता है। क्यों छांटता है? ताकि वो और फले। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा किसान है जो मुझे और आपको देखता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम वचन को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ के डाल देते हैं, लेकिन यहां पर जो कह रहा है छांटने का मतलब, छांटने मतलब क्या है, वो कैंची चलाता है। परमेश्वर अनेकों बार हमारे जीवन में इस प्रकार का व्यवहार करता है। अगर हम समय हो, अगर इब्रानियों उसका 12वां अध्याय देखें, 12वें अध्याय में करीब 4 पद से लेकर के 9 पद तक, 9 पद में करीब 9 बार एक शब्द आया है, चेस्टनिंग, ताड़ना। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। क्यों ताड़ना करता है? ताकि वो और भी विश्वास में मजबूत हो, ताकि वो और भी अनुशासन के जीवन में, ये कैंची चलाना है, ये जो फल ला रहा है उसके साथ परमेश्वर ऐसा व्यवहार कर रहा है, किसान ऐसा व्यवहार कर रहा है, जो फल ला रहा है उसके साथ वो और अधिक छटनी उसकी कर रहा है, ताकि वो और फलवंत हो जाए। यदि आप फल नहीं ला रहे हैं तो आप काटे जा सकते हैं, आग में डाले जा सकते हैं। आप वो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, जो आगे जल के देखेंगे, वो सारी चीजें वंचित रहते हैं। लेकिन हो सकता है अगर परमेश्वर के साथ सही रीति जुड़े हैं और फलवंत जीवन है, तो हो सकता है परमेश्वर आपको काट छाट रहा हो, शायद बीमारी के द्वारा, शायद कठिनाइयों के द्वारा, शायद नौकरी ना मिलने के द्वारा, शायद कठिन परिस्थिति में लेके जाने के द्वारा, ताकि आप और अधिक उसके साथ जुड़ना सीखें, और अधिक उसके साथ मिलना सीखें, और मजबूती के साथ उससे जुड़े रहें, और अधिक आप विश्वास में बढ़ते हुए, उसके ऊपर निर्भर होते हुए, और अधिक आपका जीवन फलवंत हो जाए। कोई मसीह जीवन ऐसा नहीं है जिसको कठिन परिस्थिति में से होकर नहीं जाना पड़ता, हर एक मसीह को जाना पड़ता है। वो क्या करता है? वो छांटता है कि और फले। लेकिन तब उसके बाद तीसरे पद में कहता है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे शुद्ध हो चुके हो। कौन सा वचन? प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको शुद्ध करता है। जो वचन, जिस वचन पर मैंने और आपने विश्वास किया, जिस वचन को मैंने और आपने थाना है, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। वचन के द्वारा मैं पापों की क्षमा मिलती है, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को शुद्ध करता है। अब वो ये कह रहा है, शिष्यों को कह रहा है, भैया वो जो दाखलता थी उसमें जो डालियां लगी थी वो फलवंत नहीं रही है, इसलिए वो काट डाली जाएंगी और क्या करके आग में डाल दी जाएंगी। लेकिन तुम वो डाली हो कि आने वाले चल करके तुम्हें को छटनी का सामना करना पड़ेगा। अपने शिष्यों को कह रहा है, छटनी का साथ, तुम्हें कठिनाइयों में सो के जाना पड़ेगा, परीक्षाओं में सो के जाना पड़ेगा, विरोध में सो के जाना पड़ेगा, समस्याओं में सो के जाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? तुमको मैंने अपने वचन के द्वारा शुद्ध किया है, तुमने मेरे वचन पर विश्वास किया है। और यूहन्ना का यही उद्देश्य था। और उस वचन के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उस वचन के द्वारा परमेश्वर के संतान माने गए, उस वचन के द्वारा तुमने परमेश्वर के राज को में प्राप्त किया है, उस वचन के द्वारा। और उस वचन जिसने तुम्हें शुद्ध किया है, तब वो कहता है तुम मुझ में बने रहो, उसमें यीशु मसीह स्वयं वचन है, वचन यीशु है, यीशु वचन है। तुम वचन में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम। अब यह दाखलता है, दाखलता डाली में जुड़ जाती है, डाली दाखलता में जुड़ जाती है। केवल ये नहीं जुड़ती है, ये भी जुड़ती है। और इसीलिए वो कह रहा मैं तुम में बना हूं, तुम मुझ में बने रहो। पहले उसने कर दिया है, उसने उत्पन्न कर दिया है, उसने निकाल दिया है, उसने बढ़ा दिया है। अब मुझे वो कह रहा मैं तो तुम्हारे साथ बना हूं, मेरे में परिवर्तन नहीं है, मैं अपने वचन से इनकार नहीं करता हूं, मैं अपने प्रतिज्ञा से इनकार नहीं करता हूं, मैं अपने व्यवहार से इनकार नहीं करता हूं, मैं तो तैयार हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें क्या करना, तुम मुझ में मैं तुम में। कितना सुंदर है, कितना अच्छा परमेश्वर है मेरा और आपका, वो हमेशा मेरे और आपके लिए तैयार है जो मुझ में और आप में। और तब आगे चल के कहता है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तब पांचवें पद में फिर क्या कह रहा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, ना केवल फलता है लेकिन बहुत फल फलता है। तब आके चल के क्या कहता है, एक वार्निंग है या चुनाव चेतावनी है, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हमारे जीवन में घमंड आ जाते हैं, हम दूसरों की सुनना नहीं चाहते, मैं सब कुछ हूँ, दूसरे की नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी चीज आती है, कई सारे विचार आते हैं, कई सारी चीजें कह रहा तुम मुझसे अलग होकर। अगर प्रभु के साथ आपको रहना है तो आपको अपने आप को परमेश्वर के वचन की अधीनता में डालना है। मेरे प्रियो एक विश्वासी का कार्य है, जो भी वो करता है क्या ये वचन के अनुसार है, मेरे कदम, मेरे निर्णय, मेरे कार्य वचन के अनुसार हैं? और अगर वचन के अनुसार नहीं तो मुझे क्षमा मांगनी है और अपने आप को फिर वचन में लाना है, पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है। और कई बार हमारा हट्टीपन का जीवन जो है हमें अलग कर देता है, वो कहता तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर मसीह से अलग होकर कुछ नहीं, अब कुछ नहीं का क्या मतलब है, अरे मैं तो प्रभु के साथ हूं इसलिए मैं आश्रय कम कर रहा हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं कर, नहीं 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 ये नहीं कह रहा हूं। आज हवाई जहाज में उड़ना बड़ी बात नहीं है, चंगाई करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी चीजों को लेकर चलना बड़ी बात नहीं, वो बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, फल नहीं ला सकते वो फल जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, वो फल जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और जिसके द्वारा परमेश्वर आनंदित हो सके आगे चलकेगा और वो आनंद मुझे और आपको मिल सके। आगे वो यही बात को वर्णन करता है, तुम मुझसे अलग कुछ नहीं कर सकते। अब ना केवल दो प्रकार की डाली लेकिन दो प्रकार का काटना छाटना। अब फल, भले फल और निकम्मे फल, जो नहीं फलती उसके क्या करता है, आग में डाल देता है, ये सारी स्थिति होती है। तब आगे चल के क्या कह रहा है, पांच पद में फिर से कह रहा है तुम मुझ में और मैं तुम में। अगर 14 अध्याय को देखें, 14 अध्याय के 20 पद में, उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। तीन चंद के नाम है यहां, क्या क्या कह रहा हूं वो, उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर का जन विश्वासी जन, और पुत्र के द्वारा पिता में, पिता के द्वारा पुत्र में हमारा संबंध हो जाता है, कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है। और जब ऐसा है, जब ऐसा है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर पुत्र में होकर पिता में जुड़ा रहता हूं और पिता में होकर पुत्र मुझ में जुड़ा रहता है, तब हमारा जीवन फलवंत होता है। कैसे पिता पुत्र पिता के साथ जुड़ा हुआ था, कैसे पुत्र पिता के साथ जुड़ा हुआ था, वो आगे इस बात को वर्णन करता है। सातवां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, अतः वचन में बने रहना। इतवार को वचन सुन लिया काफी है, बुधवार आएगा फिर थोड़ी देर जाके सुन लेंगे, पूरे हफ्ते तो है, बहुत सारे काम है। अरे आप लोगों के, आप लोगों को तो केवल प्रचार करना, इसलिए आपको तो बैठना ही पड़ता है, हमारे पास तो बहुत सारे काम है, हमको तो और भी काम करना, ऐसा नहीं चल सकता। यदि मैं और आप जो साधारण विश्वासी, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, फलवंत जाते हैं, मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के वचन के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। उसके लिए समर्पण की जरूरत है, उसके लिए अनुशासन की जरूरत है, उसके लिए जीवन में प्राथमिकता की जरूरत है। अगर आपके जीवन में प्राथमिकता नहीं है वचन के लिए, आप अपने जीवन को अनुशासित नहीं करते, और ना केवल आप अनुशासित करते हैं, ना आप अपने आप को समर्पित कर सकते। तब आगे चल के क्या कहता है? तब वो कहता है जो चीज मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मांगोगे मिल जाने मतलब क्या है? शिष्यों ने आगे क्या चल के मांगा था? शिष्यों ने क्या मांगा था? शिष्यों ने रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगा था। यद्यपि रोटी कपड़ा ना मकान परमेश्वर ने उनको देने के लिए कहा है, वो पाप नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर के परीक्षा पर विजय पाना, सबसे बढ़कर सुसमाचार को सुनाना, सबसे बढ़कर यीशु के पीछे चलना, चाहे जान चली जाए हम यीशु के पीछे चलेंगे, ये मांग रहे थे। उनको भी घर की जरूरत थी, है ना। जब पतरस था तो प्रोटी कोठी में बहुत बड़ा घर था, वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस भी किराए के मकान में 2 साल रहा था, उसको समझना है, वो अलग विषय है। लेकिन बात क्या है, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह है या संसार की चीजें हैं? इसको हमें देखना है। अब वो तब आगे चल के कहता है 8वें पद में, पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। पहला कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, जो मुझ में बनाता है वो बहुत फल लाता है। दूसरी बार वो कहता है पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। यदि आपको मुझे परमेश्वर पिता की महिमा करनी है तो मेरा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए? फल लाने वाला जीवन होना चाहिए। तब आगे चल के कहता है, ना केवल ये, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। तुम बहुत फल लाओ, तुम मेरे प्रेम में बने रहो, और ना केवल प्रेम में बने रहो लेकिन 10वें पद में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रेम में बने रहो, आज्ञा पालन करने बने रहो। कैसे पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया? फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 8 पद, और लिखता है पौलुस वर्णन करता है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, यहां तक शून्य कर दिया कि आज्ञाकारी रहा और आज्ञाकारी रहा, और उसने क्रूस की मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सहली। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श, वो त्याग करने के लिए तैयार था, सब कुछ करने तैयार था। पिता ने, पुत्र ने पिता की आज्ञा पालन करने द्वारा अपने पिता को प्रसन्न किया, अपने पिता की महिमा की, अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। ठीक इसी तरह से यदि मेरे और आपके जीवन में आज्ञाकारिता का जीवन है परमेश्वर के प्रति, तो मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर पिता को महिमा देगा, परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट करेगा, और परमेश्वर पिता के लिए फलों को उत्पन्न करने पाएगा। तब वो आगे चल के कहता है, ना केवल इतना कहता है लेकिन 11वें पद में, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही है मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब इस फलवंत जीवन के द्वारा, मैंने इस खंड को भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में नहीं बांटा, मैं चाह रहा था कि हम एक एक पद को समझ सकें, हम वो भी जा सकते थे, लेकिन जान मुझ के एक एक पद को समझना कई बार अच्छा है। यहां पर वो कह रहा है कि मेरा आनंद, ये बातें इसलिए कही है मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद भी पूरा हो जाए। जब पिता का आनंद बना रहेगा, पिता क्या करेगा? अपने आनंद में मुझे और आपको सहभागी करेगा। सो क्या क्या हो रहा है फल लाने का जीवन के द्वारा, क्या क्या हो रहा है? हम पिता की के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, पिता की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, पिता की आज्ञाकारिता को प्रकट कर रहे हैं, पिता के आनंद को प्रकट कर रहे हैं उस फल लाने के द्वारा। ये सारे प्रतिउत्तर हो रहे हैं, ये सारे प्रभाव हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे बार 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 बार, तब 16वें पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कैसा रहे? बरसात में कुछ और, गर्मी में कुछ और, जाड़े में कुछ और। यहाँ तो हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं कि हर सीजन पे अलग अलग फल मिलते हैं, लेकिन बाइबल सीजन के अनुसार फल नहीं देती। जब सब कुछ अच्छा है खूब बढ़िया फल हो रहे हैं, जब कुछ नहीं है तब कोई फल नहीं दिखा, सूखा गया। और कई बार मसीह जीवन आपको मालूम कैसा है, मैं अक्सर बच्चों को उदाहरण देता हूँ, कैंप में बहुत उदाहरण देता हूँ। किसने छुई मुई के पेड़ को देखा है? कितने लोगों ने छुई मुई के पेड़ को देखा? छुई मुई के पेड़, आप छुई मुई के पेड़ को कर दीजिए, छू कर दीजिए, वो फट से मुरझा जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर ऐसा। कई विश्वासी लोग ऐसे हैं, जरा सी तकलीफ आ गई, जरा सी परेशानी आ गई, जरा सी बीमारी आ गई, जरा सी कष्ट हो गया, जरा सी कठिनाई आ गई, जरा सी तंगी आ गई, हम मुरझा गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जाना, एक फलवंत जीवन परमेश्वर की महिमा करने वाला है, एक फलवंत जीवन परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाला है, एक फलवंत जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करने वाला है, और एक फलवंत जीवन उस आनंद को प्रदर्शित करने वाला जो परमेश्वर देता है। लेकिन कैसे फल वो चाह रहा है,
कैसे फल चाला। बाइबल में नए नियम में कई प्रभु के सेवकों ने अलग अलग प्रकार के फलों का वर्णन किया है, लेकिन दो तीन हम स्थलों को देखेंगे। एक मसीह जीवन एक फलवंत जीवन है। अब कैसे उन फलवंत को हम प्रदर्शित कर सकते हैं? गलतियों उसके 5:22-23 पद में पवित्र आत्मा का फल, मां ध्यान दीजिएगा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल है। अर्थात पवित्र आत्मा एक है और एक पवित्र आत्मा के कई सारे फल हैं। वहां 9 फलों का वर्णन है, आनंद, प्रेम, धीरज, मेल, भलाई, ये सारी कुछ, विश्वास, ये सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ इनके अलावा और भी कुछ है। रोमियो उसका 1:13 पद, कुछ पदों को हम देखेंगे। यहां पर पौलुस क्या कहता है, वो कह रहा है यहूदियों के बार बार बात करते हुए कहता है, 12:13 पद पढ़ रहा हूं, अर्थात जब मैं तुम्हारे मध्य हूं तो हम आपस में एक दूसरे के विश्वास से प्रोत्साहित किए जाएं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आने की योजना बनाई और अब तक रोका गया, जिससे कि तुम्हारे बीच में भी कुछ फल मिले जैसा शेष गैर यहूदियों के बीच मिला है। तुम्हारे बीच में भी फल मिले, ये आत्माओं को जीतने का फल है, आत्माओं को बचाने का फल है। मेरे प्रियो, पौलुस यहां कह रहा है, और एक विश्वासी जीवन जब उसका जीवन प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, मसीह के साथ जुड़ा रहता है, उसके जीवन की साक्षी, उसका जीवन का स्वभाव, उसका जीवन का व्यवहार, उसका जीवन दूसरों को जीतने के कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, यदि आज मेरी और आपकी आंख बंद हो जाए, आप कितने फल को लेकर के आप प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे? कोई आत्मा है जो आपके द्वारा प्रभु में आ गई? कोई व्यक्ति है जिसको आपने सुसमाचार सुना दिया? कोई व्यक्ति है जिसके लिए आपने प्रार्थना कर ली? कोई आपके परिवार का जन है, आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, कोई है? और भी बहुत स्थल है, दैनिल भी वर्णन करता है, नीति वचन भी वर्णन करता है आत्माओं को जीतने के लिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता। दूसरा एक और स्थल देखिए, रोमियो उसका 6:22, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। कौन सा फल? पवित्रता का फल। जीवन में पवित्रता, हमारे सोच में पवित्रता, हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे कार्यों में पवित्रता, हमारे स्वभाव में पवित्रता। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, दिन प्रतिदिन उसके वचन के साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को पवित्र बनाता चलाता है। पवित्र आत्मा का कार्य यही है। अगर हम समय हो 16 अध्याय में जाएंगे, यूहन्ना 16 अध्याय में, तो पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम यह है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम, माफ कीजिएगा मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के माफी मांगकर कान पकड़ते हुए सच्चाई के साथ, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम अन्य भाषा बुलवाना नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम आशय कम करवाना नहीं है। ये मिथ्या है, ये गलत शिक्षा है, ये झूठी शिक्षा है, स्पष्ट कह रहा हूं। किसी को बाद विवाद करना, मेरे से आके बाद में मिलता है, बात कर सकता है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम जीवन को पवित्र बनाना है, पाप से कायल करना है। यौना 16 अध्याय का अध्ययन कर लीजिए, सबसे बड़ा काम। और वो जब मेरे और आपके जीवन में रहता है, वो दिन पर दिन मुझे और आपको पवित्र बनाना चाहता है। ये फल है, न केवल आत्मा को जीतना लेकिन सम के जीवन को परमेश्वर के रूप में पवित्र बनाते जाना। क्लूसियो 1:10, पौलुस भी याकूब में भी उसी बात को वर्णन करता है, इस तरह से लिखा हुआ है, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रस कर सको तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। सब भले कामों से फलवंत होके, भले कामों का फल, मेरा और आपका जीवन में भले कामों फल बढ़ना है। किसी की सहायता करनी है, किसी की चिंता करनी है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है, किसी की सुधि लेनी है। मेरे प्रियो, अब आज सोच के मत ही सोचिएगा कि अंकल ने आज प्रचार किया है, भले काम करना है, कोई ना कोई तो आएगा मेरे लिए भला काम करेगा, मेरी चिंता करेगा, मेरी सहायता करेगा, मुझे देगा, कुछ तो करेगा अंकल। हे प्रभु, किसी के मन को तोड़ दे, मरोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, ताकि वो मेरे पास आके भला काम करे। वो दूसरे के लिए नहीं, वो आपके लिए है। आपको कैसे कदम बढ़ाना है भले काम करने के लिए, आपको किसके पास जाना है? मेरे प्रियो, बात को समझना है, कौन से भले काम आप कर सकते हैं? क्या बीमारी के किसी बीमार को विजिट कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं,
किसी एक गरीब बच्चे को आप अपने आय से पढ़ा सकते हैं, शायद 300-400 रुपए खर्चा। मैं कह रहा हूँ भाइयों, मैं अक्सर बोलता हूँ चर्च में, मैं बेतल में था और बेतल में मैंने चर्च में अधिकतर संडे को मैं चुनौती देता था, ये चुनौती देता, हमारे बीच में ऐसे ऐसे परिवार हैं कि अगर 500 रुपए आप किसी एक बच्चे, गरीब बच्चे के लिए खर्चा करें, आप उसके जीवन को बना सकते हैं। अपेक्षा करते हैं हमारे लिए होता रहे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। बहुत आगे भले काम है, बहुत तरीके के भले काम है। तो ये कहता तुम्हारे भले काम के द्वारा क्या हो सके, वो कह रहा है कि बलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। धन्यवाद का भला काम है। इब्रानियों का लेखक उसके 13 अध्याय में कि तुम्हारी स्तुति के द्वारा परमेश्वर के भले कार्य प्रकट किए जाए, स्तुति आराधना के द्वारा, प्रभु के देने के द्वारा तुम्हारा भले काम, तुम्हारे हाथ खुल जाए। कई बार हम जेब में डालते हैं हाथ, सबसे छोटा नोट, सबसे छोटे सिक्का कौन सा होगा, वही टटोलते रहते हैं। मुझे प्रभु ने एक बार सिखा दिया, बहुत बहुत सारे अनुभव हैं जो प्रभु ने दिए, 40-45 साल हो गए और मार मार के सिखाया प्रभु ने, बहुत अच्छी रीति से सिखाया प्रभु ने। मेरे प्रियो, कैसे देना है, ये भले काम है। सुसमाचार को बांटना, आप यात्रा करते हैं, एक ट्रैक अपने साथ लेके जाइए, कोई पर्चा आपके साथ लेके, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन एक चीज नहीं ले आते, बाइबल नहीं ले आते। और आजकल तो मोबाइल मिल गया, बुरा लगे दो रोटी ज्यादा खाइएगा, लेकिन मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, साधन है भले काम, कितनी सूची है। सो हमारे फल और भी बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, आप घर में जाकर और अध्ययन करते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे भले काम चाहता है, ये फल है। अगर मैं और आप परमेश्वर के प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चय उसका श्वास, उसकी आत्मा, उसका जीवन मेरे अंदर प्रभावित होगा, प्रभाव करेगा। और जब वो प्रभाव करेगा तो उस डाली फल जरूर लगेंगे। हाँ, अगर ये डाली अंदर अंदर सड़ रही है और जुड़ी है, तब क्या होगा, वो धीरे धीरे सूखती चली जाएगी और किसान आएगा, काटेगा और बाहर निकल जाएगा। जुड़ी तो है, लेकिन कुछ अंदर अंदर हो गया, शायद कीड़ा लग गया, कुछ और हो गया, हमें कई बार छांटने पड़ते हैं यहाँ पर, अरे इसमें तो कीड़ा लग गया, इसको काट डालो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दाखल मैं सच्ची दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता हूँ। वो सारी दाखलताएं उन्होंने अच्छे फल उत्पन्न नहीं करे। अगर तुम्हें फल चाहिए, तुम मेरे साथ जुड़ो। मेरे प्रियो, बिना प्रभु यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करे, बिना पापों से क्षमा पाए, बिना नया जन्म प्राप्त करे, बिना यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करे, बिना प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर अपने दीन और अपने आप जीवन को समर्पित करे, हम प्रभु से जुड़ नहीं सकते। पहला आरंभ वहीं से है, और जब हम उसे जन्म पाते हैं तब उसे जीते हैं। उसके बाद हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है, उसकी आज्ञा में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है। और जब हम ये करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमारे जीवन वो जीवन प्रभावित होता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन जो डाली की जीवन के रूप में है, वो फलवंत होती चली आती है, और उसके द्वारा। और मेरे प्रियो, अंतिम बात कहना चाहूंगा, कोई भी पेड़, कोई भी डाली, कोई भी फल स्वयं अपने आप को तृप्त नहीं करता, वो दूसरे को तृप्त करता है, दूसरे की भूख मिटाता है, दूसरे को संतुष्टि प्रदान करता है, दूसरे को आनंद प्रदान करता है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। क्या मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण है? क्या मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए आनंद का कारण है? प्रभु सहायता करें। काश मैं और आप इस चुनौती को समझ सकें, इस चुनौती को समझ सकें। प्रभु समझ का, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम्हारा पिता किसान है, तुम डालियो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत से फल लाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।